శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజ్ ప్యారే ప్యారే బాప్ దాదా నే హమే యాద్ దిలాయా హై కి బచ్చే యే తుమ్హారా సంగమ యుగీ బ్రాహ్మణ జీవన్ బహుత్ అమూల్య హై. బ్రాహ్మణ జీవన్ అమూల్య అర్థాత్ తుమ్హారా హర్ శ్వాస హర్ సంకల్ప హర్ ఘడీ సబ్ అమూల్య హై. ఇస్లియే ఇస్కో వ్యర్థ నహీ గవాఓ, క్యోంకి ఇస్ బ్రాహ్మణ జీవన్ మే తుమ్ జితనీ కమాయి కరోగే ఉత్నా బాబా కహతే యే కమాయి ఆప్కీ జనమ్ జన్మాంతర్ సాత్ చలేగీ. మనుష్య ఉస్ కమాయి కే లియే కితనీ మెహనత్ కర్తే హై, లేకిన్ వో కమాయి తో యహీ రహ జాయేగీ. వహాన్ తో ఉతార్ చడావ్ హోతా హీ రహతా హై, కభీ బహుత్ అచ్చీ కమాయి కభీ ఘాటా పడ్ జాతా హై. పర్ యహాన్ ఇస్ పఢాయి మే తుమ్హారీ కమాయి కమాయి హై. తో లగాతార్ బినా నాగా బాబా కీ పఢాయి పఢ్తే రహే, బాబా కో యాద్ కర్తే రహే, అప్నీ ధారణా పర్ ధ్యాన్ దేతే రహే ఔర్ సేవా కర్తే రహే, తో కదమ్ కదమ్ పర్ కమాయి హై. నహీ తో ఫిర్ బాబా యే భీ కహతే హై మాయా సబ్ దేఖ్ రహీ హై, వో అచానక్ వార్ కర్ దేగీ. ఇసీలియే మాయా సే భీ సావధాన్ రహనా హై, నహీ తో కీ కమాయి చట్ చట్ హో జాతీ నా. అగర్ పూరే సావధాన్ హై తో యే కమాయి కమాయి హై. ఇస్ కమాయి మే తుమ్హే కోయి డర్నా నహీ హై, కోయి చోర్ లూట్ జాయేంగే, కోయి ఆగ్ జలా దేగీ, సర్కార్ లే లేగీ, కుచ్ నహీ, కోయి డర్ కీ బాత్ నహీ హై. క్యూంకి యే ఆంతరిక్ కమాయి హై, యే ఆత్మా కే సాథ్ జాయేగీ. తో ఇస్లియే కితనా ధ్యాన్ రఖనా హోగా కి యే కమాయి హమారీ లగాతార్ చల్తీ రహే, ఇస్మే ఘాటా నా పడే. వహాన్ తో దేవాలా భీ మార్ దేతే హై. బాబా కహతే హై యహాన్ దేవాలా నహీ మార్ సక్తే అగర్ పూరా ధ్యాన్ హై తో. తో ఆజ్ బాబా కీ మురళీ ఇసీ పర్ హై. సునతే హై బాబా కే మహావాక్య ఔర్ ఉస్మే ఫిర్ బాబా కహతే హై తుమ్కో బహుత్ సింపుల్ రహనా హై. కోయి ఠాట్ వాట్ ఇస్ సంగమ్ పర్ నహీ కర్నా హై. బ్రహ్మా బాబా కితనా సింపుల్ హై, కోయి ఠాట్ వాట్ నహీ. మమ్మా కితనీ సింపుల్, కిసీ భీ ప్రకార్ కా ఠాట్ వాట్ నహీ. యహాన్ తుమ్ వనవా మే హో, తో వనవా మే హోనే కారణ్ బహుత్ సింపుల్. ఫిర్ భవిష్య మే బాబా కహతే హై గోల్డ్ సత్యుగ్ మే తో తుమ్ ఖూబ్ జేవర్ పహన్నా, జితనా చాయే పహన్నా, కోయి కమీ నహీ హోగీ. ఔర్ ఫిర్ ద్వాపర్ కలియుగ్ మే తుమ్హారీ జడ్ మూర్తియో కో భీ కితనే జేవర్ పహనాయేంగే. పహనాతే నా, బహుత్ పహనాతే హై సచ్చే సచ్చే జేవర్, హీరే పహనాతే హై దేవతాఓ కీ మూర్తియో కో. తో దేవతాఓ కీ మూర్తియాం భీ బహుత్ కుచ్ సోనా చాందీ సోనా హీరా పహన్తే హై. ఔర్ చైతన్య జబ్ హోంగే తభీ భీ తుమ్ బహుత్ పహనేంగే, లేకిన్ అభీ బిల్కుల్ నహీ. తో బాబా హమ్ బచ్చో కో ఇస్లియే భీ సావధాన్ కర్తే హై కి బచ్చే తుమ్హే అభీ వనవా మే రహనా హై. తో అబ్ హమ్ సునతే హై బాబా కే మహావాక్య. ఆజ్ 17/4/2026 హై. మీఠే బచ్చే పావన్ బనో తో రూహానీ సేవా కే లాయక్ బనేంగే. రూహానీ సేవా భీ తబ్ కర్ సకేంగే జబ్ పవిత్ర బనేంగే. తో పావన్ బనో తో రూహానీ సేవా కే లాయక్ బనేంగే. దేహీ అభిమానీ బచ్చే రూహానీ యాత్రా పర్ రహేంగే और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। चारों ही सब्जेक्ट्स में हमारी कमाई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो कैसे चारों सब्जेक्ट्स में कमाई कमाई है, पर उसके लिए क्या करना होगा? पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है? कैसे कैसे ये सच्ची कमाई है संगम युग पर जो हम करते हैं? उत्तर, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता है। चारों सब्जेक्ट्स में ही कमाई है ना, ज्ञान सुनना और सुनाना, तो कितनी कमाई हो जाती है। फिर याद करना और कराना, उसमें भी कितनी कमाई हो जाती है। तो यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। पता ही नहीं है तो क्या कमाई करेंगे, ऐसी कमाई। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। लेकिन बाबा इस गीत को करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? बाबा कहते गिरना नहीं है, ऐसे नहीं, गिरना है फिर संभलना है, गिरना है संभलना है, तो उसी में ही टाइम चला जाएगा। तो ये जीवन जो अमूल्य है उसको तो गंवा देंगे, इसीलिए गिरना नहीं है। तो हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति, ये गीत तो भक्ति मार्ग का है। भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है, गिरे भी है संभले भी है, तो बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, वहां भावना है केवल भक्ति मार्ग में। अभी कैसी भावना है? ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं, कनरस बहुत है ना शास्त्रों की कहानियों में, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। कब रोना आ जाता है? कौन सी कहानी से विशेष रोना आ जाता है? कहेंगे हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, और सुनाने वाले कथावाचक भी कितने रोचक ढंग से सुनाते हैं। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते भी है, अरे हमारी भगवती सीता का क्या हाल हुआ, रावण डाकू उठा के ले गया। अब बाबा कहते हैं ये सब है दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। राम को इसलिए भी पुकारते हैं, हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ, पर ये नहीं समझते हैं आओ आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ, पर ये नहीं समझते हैं कि आत्मा दुखी होती है। ये नहीं समझते, भले कहते हैं हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ, पर आत्मा दुखी होती है ये समझते नहीं है। क्यों क्यों नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है? और कई क्योंकि वो समझते आत्मा दुखी होती नहीं है। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है क्योंकि वो समझते कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा पर तो न दुख न सुख, सबसे परे है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा तो दुख सुख से न्यारा है, तो आत्मा भी दुख सुख से न्यारी है, इसीलिए फिर क्या समझ रहे सब शरीर पर लगता है। तो बाबा कहते हैं वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, समझते आत्मा सुख दुख से न्यारी है। अब ये क्यों कहते हैं कि आत्मा दुख सुख से न्यारी है, क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो फिर बच्चे आत्माएं, फिर बच्चे परमात्मा के, तो पिता दुख सुख से न्यारा है तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे, वो भी न्यारे हैं। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी तो बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। नहीं तो मुरझाया हुआ चेहरा तो कभी इस ज्ञान मार्ग में होना ही नहीं चाहिए, सदा प्रफुल्लित रहना चाहिए, लेकिन कभी मुरझाया हुआ चेहरा भी रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये होती है माया से लड़ाई। जब माया लड़ती है, वार करती है, तो प्रफुल्लित चेहरा बदल कर गमगीन चेहरा बन जाता है। ये होती है माया से लड़ाई, माया पर ही तो जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। संजीवनी बूटी हमारी कौन सी है, आत्मा बेहोश अगर हो गई, माया ने उसे बेहोश किया, तो संजीवनी बूटी है मन मना भव, उनको याद दिलाओ जो ऐसे गमगीन अवस्था में आ गया है, मुरझा गया है, उनको याद दिलाओ, बाबा को याद करो, बाबा साथ है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो। तो मन मना भव की संजीवनी बूटी दी जाती है। भक्ति मार्ग में तो चहचटा बहुत है, भवका बहुत है भक्ति मार्ग में। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं, ये जेवर फिर ठाकुर की प्रॉपर्टी हो जाती है। जो भी जेवर मंदिरों में होते हैं ये सब ठाकुर की प्रॉपर्टी है, वो देवताओं की प्रॉपर्टी है, वो किसी को देते नहीं है। वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो फिर पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। संभालते तो वही है ना, ट्रस्टी संभालते हैं, पुजारी संभालते हैं, पर वो ठाकुर की प्रॉपर्टी समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में तो बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे, फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी हमारी जड़ मूर्तियां कितना जेवर पहनती है। अब तो कुछ भी नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं पहनना है, बस भक्ति मार्ग में मूर्तियों को पहनाया, सत्युग में खुद पहना, बाबा कहते अभी कुछ नहीं पहनना, अभी कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, सत्युग में चेतन रूप में पहने, फिर द्वापर कलयुग में जब मूर्तियों को पहनाया तो वो भी पहने, अब नो जेवर, अभी कोई जेवर नहीं पहनना, बिल्कुल साधारण। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट वाट नहीं है। बाबा को कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई सब ठाट वाट सब खत्म, बिल्कुल सिंपल हो गए, कोई ठाट वाट नहीं। सन्यासियों के भी वो ठाट वाट होते हैं, क्या क्या वो पहनते हैं ना, चाहे वो मालाएं भी पहनते हैं, कितना ठाट वाट रखते हैं, सन्यासियों के भी वो ठाट वाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है, कोई खूबसूरत होते हैं कलयुगी दुनिया में, कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है, सुंदर होते हैं, फिर और सुंदर गहने पहनते हैं तो और सुंदर लगते हैं, तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे, कब खूबसूरत थे, सतयुग में बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े बड़े हार आदि भी पहनते थे। यहाँ तो हर चीज सांवरी है ना, सब आर्टिफिशियल भी है, सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई है, सतयुग की गायों का वर्णन कितना आता है ना, कितनी सफेद सफेद सुंदर सुंदर गायें श्री कृष्ण की दिखाते हैं। तो देखो गौएं भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था, आपको पता है ना, साकार में बाबा श्रीनाथ का भक्त था, विष्णु का चित्र सदा साथ रखता था और श्रीनाथ हर द्वार हर साल जाकर के बड़ा भोग लगवाता था बाबा। तो बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी अच्छी गौएं थी, बाबा ने देखी होगी वहां भी कितनी अच्छी अच्छी गौएं हैं। श्री कृष्ण की गौएं तो बहुत अच्छी दिखाते हैं, फोटो देखिए ना श्री कृष्ण की गौओं का। यहाँ तो देखो कैसी गाय है, कोई कैसे कोई कैसे, क्योंकि कलयुग है, ऐसी दुर्दशा हो गई है गायों की इस समय, जो बाबा कहते हैं लोग दूध ही नहीं पीना चाहते कि ऐसी गाय की इतनी दुर्दशा हो जाती है। तो कोई कैसे क्योंकि कलयुग है, ऐसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, इसीलिए किसी ने दादी गुलजार से ये प्रश्न किया था कि बाबा तो अभी तो कलयुग की दुनिया में धीरे धीरे सब वेगन वेगन होते जा रहे, दूध की कोई चीज नहीं वेगन, तो सतयुग में तो दूध घी की नदियां बहती है तो वहां दूध पीते हैं। दादी से पूछा तो दादी ने फिर से जवाब दिया, क्यों नहीं पीते हैं, हाँ देवताएं क्यों नहीं दूध पीते हैं, वो तो खुशी खुशी से गईयां और ही दूध ज्यादा देती है ताकि हमारे देवताएं पिए। तो बहुत सुंदर होती है गईयां और वहां भी इतना दूध निकलता है। तो अभी तो कहते नहीं, उनके तो बछड़ों के लिए ना, बच्चों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन वहां तो उनको बहुत उनसे बहुत दूध मिलता है तो क्यों नहीं पियेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी गौएं वहां होती नहीं जैसी यहाँ है। तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। तो विचार करो गौएं तो जरूर होनी चाहिए, वहां तो गौओं का गोबर भी कितना अच्छा होगा, गंध वो बांस नहीं होगी गौएं गौओं के गोबर में, अभी तो कितनी बांस होती है, आजकल तो गौमूत्र भी पीते हैं ना, बहुत कुछ पीते हैं, गौमूत्र से कितनी चीजें बनाते हैं, पर वो बांस तो होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है, विचार करो गौएं तो जरूर होनी चाहिए, वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी गौओं के गोबर में भी, इतनी ताकत होगी, जमीन को खाद चाहिए ना, वो सब खाद बन जाती है, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है, वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है, यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है, कोई भी चीज में ताकत नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, जरा भी ताकत नहीं। बच्चिया सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते थे, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, वो तो वतन में जाती थी साक्षात्कार करती थी, अभी ये सूक्ष्म वतन में फल थोड़ी होते, ये तो सतयुग का साक्षात्कार करती थी। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ ही होगा ना, यही होगा वो वैकुंठ जहाँ इतने अच्छे अच्छे फल होंगे, फूल होंगे, सब जानवर होंगे, सब कुछ सुंदर होगा। वो भी तो यहाँ ही होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है, वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में और न मूल वतन में होता है। वैकुंठ कहाँ होता है? स्थूल वतन में, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती है वो फिर इन आँखों से भी देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है, वह जैसा पद होगा सतयुग में उसी अनुसार उसकी सामग्री भी ऐसे ही होगी। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। अभी तो ये इतने बड़े महल जयपुर में बहुत है, अभी भी है, वो तो सब होटल बन गए हैं और वहाँ शादियां भी होती है इन महलों में। तो जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है, खास वो महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। जो उस राजा के वो वंशज होंगे तो वो तो महल, वो शादियां उसमें होती है, वो टूरिस्ट प्लेस हो जाते हैं, और खुद जो उसके होंगे वो तो फिर अलग घरों में रहते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में इतने अच्छे अच्छे महल है। ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है, तुम अभी समझते हो। क्या समझते हो? हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरे बनेंगे। वो दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, अमेरिका के रोड इतने साफ सुथरे, बड़े बड़े बहुत कुछ है, तो लोग समझते थे कि बस वहीं स्वर्ग है। तो बाबा कहते यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में ये तो कुछ भी नहीं है। सतयुग की भेंट में, कलयुग में चाहे कितने भी बड़े महल है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अल्प काल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती है, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। गौओं को तो ग्वाले ही चढ़ा वो ले जाएंगे ना, तो इसीलिए गौओं के वो ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को भी ग्वाला कह दिया है। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले होते हैं वो कहते हैं हम गुजर है, वो गुजर जाति होती है जो गौओं को संभालते हैं, हम गुजर है, ग्वाले हैं। श्री कृष्ण के वंशावली है, श्री कृष्ण भी गौएं पालता था, उनके पिता को दिखा रहे नंदलाल कितनी गौएं थी उनकी। तो बाबा कहते हैं वो कौन, नंद बाबा, तो नंद बाबा की गौएं थी, तो वो कहते हैं हम गुजर ग्वाले हैं, श्री कृष्ण के वंशावली के हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली में कहेंगे गुजरों को, जो गौएं संभालते हैं उनको श्री कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे। वो तो राजकुमार था, वो थोड़ी गौएं कभी चढ़ाता होगा, लेकिन उनके पास गौएं बहुत होगी, वो गौएं जरूर वो गुजर जो है वो गुजर जो है संभालते होंगे। तो श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे, वो उनकी राजधानी में थे गुजर जो गौओं को संभालते थे। वो गुजर नाम साहूकारों के पास भी गौएं होगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो उनसे पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो वा हिंदू धर्म के हो? आजकल तो सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? ये भी कोई नहीं जानते। चलो सनातन धर्म के कहते हैं, वो सनातन धर्म भी किसने स्थापन किया, फिर हिंदू धर्म भी किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, तो क्या जवाब मिलेगा, क्या जवाब देंगे अब बच्चे जब बाबा पूछते हैं बच्चों से, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कर रहे हैं अभी, शिव बाबा ब्रह्मा अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। राम व शिव बाबा की श्री मत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता तो कह न सके, रावण ने विशेष बना दिया है, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं, तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार बैठता है, तुम जानते हो, और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं, और तुम बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। हाँ, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जीवन होगा, पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। कैसे जान जाते हो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को, ईश्वरीय बुद्धि से। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है, अमूल्य जीवन है पर इसमें बहादुरी है। क्या बहादुरी दिखानी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, तो पावन बनने की बहादुरी है। कलयुग में सब पतित और यहाँ बाबा के ब्राह्मण बच्चे पावन बनते हैं, तो कितनी बड़ी बहादुरी है। हमको जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं, इतनी बहादुरी जो हम पावन बनते हैं और फिर रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं, और तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। ये भी कितनी बड़ी बात हो रही है कि आत्माओं को रूहानी यात्रा पर हम ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, सतो प्रधान को पावन कहेंगे और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो याद में कम रहेंगे तो पवित्र भी कम बनेंगे, है ना, रह जाएगी वो विकर्म रह जाएंगे, क्योंकि याद में कम रहे पवित्र कम रहे तो विकर्म रह जाएंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, फिर पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा, क्योंकि याद में नहीं रहे पवित्र नहीं रहे कम रहे तो फिर पापों का बोझा रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, आत्मा जब परम धाम में है तो सभी पवित्र है, फिर लेकिन पवित्र आत्माएं कैसे बनी, या तो योग बल से बनी या सजा के बल से बनी, परंतु पवित्र बनकर ही घर जाना है। तो आत्माएं परम धाम में तो सभी पवित्र होती है, बाकी अंतर क्या होता है, पवित्र तो होती है, चाहे योग बल से बनी चाहे सजा बल से बनी, पवित्र होकर ही ऊपर जाती है, परंतु अंतर क्या होगा, वहाँ ऊपर में भी अंतर होगा कि सबका पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं कि ऊपर गई तो सबका सब कोई मिल जाएगी परमात्मा में, नहीं, सबका पार्ट तो अलग अलग ही सदा का है। फिर हरेक का पार्ट अलग अलग हो, सबका एक जैसा पार्ट तो हो न सके। सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? किसका है? बाबा कहते हैं शिव बाबा का है, प्रिंसिपल एक्टर है ना, तो सबसे ऊंचा पार्ट तो शिव बाबा का है। फिर उसके बाद किसका पार्ट ऊंचा है? कहेंगे ब्रह्मा सरस्वती का। जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना भी करते हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में पालना करते हैं, तो बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा का पार्ट, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अब शंकर के लिए क्या कहेंगे? शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, सिर्फ साक्षात्कार के लिए सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। अब शिव बाबा तो ब्रह्मा के शरीर का लोन लेकर के आकर ज्ञान सुनाते हैं। अब शंकर का जो शरीर दिखाते हैं वो उसका लोन वाला शरीर नहीं है, उसका तो अपना शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है, तो हरेक को अपना अपना शरीर है, श्री कृष्ण को भी अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा ही शरीर का लोन लेते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। कौन सी सेवा करते हैं शिव बाबा इस पतित दुनिया में? मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की सेवा करते हैं, और उसके लिए पावन बनाते हैं। पहले तो मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा, बाबा पिता। शंकर को बाबा कहेंगे? कहेंगे। बाबा कहते हैं, शंकर को बाबा कहना शोभता नहीं है, शंकर बाबा कैसे लगेगा, शिव बाबा ये शब्द शोभता है। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं, कितनी चीजें चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं ना, दूध से लेकर के अगर अभिषेक शुरू करते हैं, जो बहुत बड़ी वो बड़ा अभिषेक होता है, दूध से लेकर के भभूति तक भी अभिषेक करते हैं। हमने देखा है, हम गए थे काम तमिलनाडु में, वो नटराज का मंदिर है वहाँ पर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर गए थे, तो वह नटराज का मंदिर है। रात को 12 बजे शिव का अभिषेक का वो देखने जैसा है। तो कैसे अभी तो हम गए थे रात को 12 बजे वो अभिषेक देखने के लिए। तो पहले तो वो स्फटिक का शिवलिंग था, स्फटिक है ना, सफेद सफेद एकदम स्फटिक होता है ना, सफेद होता है। तो वो उसको कैसे ले आए का, परम धाम में है वो, परम धाम से उसको सृष्टि पर लाए, और जैसे उसको ले आए और अपना सिंहासन पर उसे बिठाया उस स्फटिक के शिवलिंग को, फिर सबसे पहले दूध से अभिषेक किया, फिर दूध के पानी माना दूध में पानी मिला करके फिर पतले दूध से अभिषेक किया, फिर शहद से अभिषेक किया, एक 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 चीज शहद से अभिषेक किया, इतनी चीजों से अभिषेक किया, और आखिर में भभूति से भी अभिषेक किया। भभूति माना अभी पूरा हो गया, तो कहाँ दूध, फिर कहाँ भभूति, और फिर भभूति के बाद अभिषेक करने के बाद फिर वापस उसको उसी भपके से ले गए और वापस परम धाम चला गए। तो ये बड़ा सुंदर रूप से वो दिखाया उनका अभिषेक। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तो हर एक को अपना अपना शरीर है, तो बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए आते हैं, पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, तो शिव के ऊपर अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। तो बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार किस पर है। सारा मदार योग पर है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है, योग भी होगा तो धारणा भी अच्छी होगी, फिर उससे ज्ञान भी दूसरों को सुनाएंगे तो उसकी उसका भी असर होता है। तो ये है नई बातें। भगवान ने जिनों को डायरेक्शन सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है। अभी ये ज्ञान है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वो अभी तुम जानते हो, हाँ सुनते हो, तुम ही जानते हो। धारणा होती है फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना ये अभी का ही पाठ है, अभी का ये पाठ है। सत्युग में ये पाठ नहीं होगा, ज्ञान सुनना और सुनाना, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। अब ये कितनी बड़ी कमाई है, वहां तो फिर भी हद की कमाई है, यहाँ तो कितनी बड़ी कमाई है। इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका इस कमाई का कभी देवाला निकल न सके। देवाला निकल नहीं सके माना कोई चोर लूट नहीं जाएगा, कोई खींच नहीं लेगा। तो बाबा कहते देवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वो फिर 21 जन्म साथ रहती है, वो कमाई साथ नहीं देती है, ये साथ देने वाली है। वहां तो अगर बहुत कमाया होगा लेकिन अगर विल कुछ बनाई नहीं और वो मर गया तो उस कमाई के ऊपर कितने झगड़े होते हैं, बात मत पूछो, झगड़े ही झगड़े होते हैं, क्योंकि पूरी विल तो बना के नहीं गया, तो ये किसको क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो आपस में रिश्तेदार लड़ते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए ना, हाँ उस पर ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि ये कमाई आत्मा के साथ जाएगी। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना तो नहीं चाहिए, पर बच्चे भूल जाते हैं, बाप को ही भूल जाते हैं, वर्षे को ही भूल जाते हैं। बस बात तो एक ही है, मूल बात यही है, बाबा की याद, मूल बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाली मृत्यु नहीं होती है, बुढ़ापे तक। अब ऐसे नहीं कि अचानक मृत्यु हो जाएगी, अकाली मृत्यु तो होती नहीं है, स्व इच्छा से शरीर त्यागते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक भी अकाली मृत्यु नहीं होती है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, कैसे कैसे तूफान आते हैं। तुम कहेंगे मैं बाबा को याद करूं, हाँ बैठते हैं बाबा को याद करने, परंतु कर नहीं सकेंगे, बैठे हैं बाबा को याद करने। आज शांति स्तंभ भी हम देखते हैं, बैठे हैं लेकिन यहाँ वहां देखते रहते हैं, तो कहाँ याद में रहेंगे। अब कहते हैं बाबा को याद करो परंतु कर नहीं सकेंगे, याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों की कमी है, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बस मुझे जानेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच से ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो वही है। ऊंचे से ऊंचा वर्षा भी देते हैं। हाँ, ऊंचा भगवान, ऊंचा उनका धाम, ऊंचे से ऊंचा वर्षा, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं, सदा सुखी अमर बनाना, ये सबसे ऊंचा वर्षा देते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि मन को काम तो चाहिए ना। तो बाबा को याद करो, नहीं तो मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा, तो नहीं तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ये ईश्वरीय जन्म, जन्म कहो जीवन कहो, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। अब शरीर तो पावन नहीं बनेगा, लेकिन प्रकृति को तो पावन बना सकते हैं ना, तो फिर पावन शरीर मिलेगा। इस यह ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए क्या समझो? ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए है, मेरा शरीर नहीं है, तो अमानत है। शिव बाबा ने अमानत दी है शरीर सेवा के लिए। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। मेरा है ये नहीं कहेंगे, तो ममता भी नहीं होती है, अपनापन भी नहीं होता है किसी की अमानत होती है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ये शरीर भी किसका हो गया? बाबा का हो गया। ये रूहानी अमानत है, ये रूहानी अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। ये अमानत रूहानी बाप ने दिए तो ये बाप की अमानत है। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। निरंतर क्या उपाय है? सहज उपाय निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। ये शरीर भी बाबा की अमानत है। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन, वान परस्त स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वान परस्त स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत आपका हर बोल कैसा हो। महान बनना है ना, तो आपका हर बोल महान हो। पावनिका ना, आपका हर बोल महावाक्य हो। केवल वाक्य नहीं, आपका हर बोल महान हो। हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो। मनसा का हर संकल्प आत्मा हर आत्मा के प्रति मधुर हो। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है ये कभी नहीं बोलना ना, मेरा स्वभाव ऐसा ये कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। ये स्वभाव के वश होना, बाबा कहते यही माया है। मेरा ये स्वभाव है तो बाबा कहते ये मेरा ये स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या के व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। आज भी कोई आए क्या नीचे से जो आज सुबह आए हाथ उठाए? अच्छा।